नमस्कार। अगर आप महाभारत के बारे में जानते हैं तो संभवतः आप कर्ण और अर्जुन का नाम जरूर जानते होंगे। ऐसा माना जाता है कि गुरु परशुराम के शाप के कारण अंतिम समय में कर्ण अपनी सीखी हुई सारी विद्या भूल जाते हैं। क्या ऐसा सचमुच हुआ होगा? आज के हिसाब से अगर देखें तो सचमुच ऐसा हो सकता है, ये मान लेना जरा मुश्किल होगा। चलिए इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिलता है तो अर्जुन क्या कर रहे होते हैं? उन्हें लंबे समय के लिए अपने भाइयों से भी अलग जाना पड़ता है। वो ये समय पूरा बेकार में खर्च नहीं कर रहे होते। रास्ते में वो किरात का रूप लिए हुए शिव से लड़ जाते हैं, फिर उनके ही वरदान से उन्हें पशुपता अस्त्र मिल जाता है। आगे वे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में नागों और दूसरे जीवों से मिलते हैं। यहाँ भी कई बार उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। इंद्र के पास जाकर वो लंबे समय तक सीखते भी रहते हैं। फिर बाद में वो दक्षिण भारत में होते हैं, जहाँ वो हनुमान जी से उलझ पड़ते हैं। अंत में इसका भी उन्हें लाभ ही होता है, क्योंकि युद्ध के समय हनुमान जी उनकी ध्वजा पर होते हैं। सोचिए, अगर इन सब से युद्ध कर रहे थे तो उस समय अर्जुन कौन से अस्त्र निकालते होंगे? साधारण का तो इन पर कोई भी असर होने से रहा, तो निस्संदेह अर्जुन अपने दिव्यास्त्र चला रहे होंगे। इनकी तुलना में कर्ण कहाँ थे? क्या वो लगातार दिव्यास्त्रों का संधान कर रहे थे? शायद नहीं। चलिए, इस प्रश्न को तर्क का प्रश्न मानते हुए फिलहाल यहीं छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, भगवत गीता को देखते हैं। युद्ध के समय हुई श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की इस चर्चा को आज भी पढ़ा जाता है। बस इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि पुराने दौर की तरह हमारे पास आज गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती, और अधिकांश लोग इसे खुद ही पुस्तकों से पढ़ने का प्रयास करते हैं। संस्कृत भाषा के ज्ञान की कमी से ये काम कठिन भी हो जाता है। हम लोग अक्सर हिंदी अंग्रेजी अनुवादों से काम चला रहे होते हैं। ऐसे में पढ़ा कैसे जाए, इसके लिए हम लोगों को काव्य में अन्वय देखना चाहिए। अन्वय का अर्थ है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। अन्वय का शाब्दिक अर्थ सकारात्मक भी होता है। काव्य में शब्दों को ही नहीं, श्लोकों का भी अपना अन्वय होता है। इसके चार भेद माने जाते हैं: युग्म, विशेषक, कलाप और कुलक। कितने श्लोकों को एक साथ पढ़ने या कहने पर तार्किक अर्थ सामने आता है, ये भेद उस आधार पर किए गए हैं। जहां सिर्फ दो श्लोकों को पढ़ने से अन्वय आए उसे युग्म कहते हैं, जहां तीन श्लोकों का एक साथ अन्वय करना हो उसे विशेषक कहा जाता है। कलाप में चार श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाता है, और जहां चार से अधिक श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाए उसे कुलक कहा जाता है। भगवद गीता में इन चारों का प्रयोग होता है। तो आइए सबसे पहले कुलक का प्रयोग देखते हैं। जहां चार से अधिक श्लोक एक साथ पढ़े बिना कोई तार्किक अर्थ नहीं निकलता। भगवद गीता के चौथे अध्याय में 24वें से लेकर 30वें श्लोक को देखिए। भगवद गीता का ये 24वां श्लोक अक्सर लोग भोजन शुरू करने से पहले पढ़ रहे होते हैं। मोटे तौर पर इसका अर्थ होता है कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अक्सर इसे अकेले ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये कुलक है, इसलिए अगर पूरे तर्कपूर्ण अर्थ में देखना हो तो आपको इसे 30वें श्लोक तक एक साथ लेकर देखना होगा। अगर श्री अभिनव गुप्त की भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या देखेंगे तो 13वें अध्याय के 8वें से लेकर 13वें अध्याय के 12वें तक की व्याख्या एक साथ ही आती है। कलाप में चार श्लोकों का अन्वय एक साथ किया जाता है, और इसका उदाहरण चौथे अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक में दिख जाएगा। आदि शंकराचार्य के अलावा श्री रामानुजाचार्य और श्री अभिनव गुप्त दोनों इन श्लोकों का अन्वय एक साथ ही करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 42वें से लेकर 45वें श्लोक तक कलाप अन्वय का प्रयोग होता है। तीन श्लोकों का अन्वय विशेषक पहले अध्याय के चौथे से छठे और 16वें के 18वें श्लोक तक दिख जाएगा। दूसरे अध्याय में 42वें से 44वें श्लोक तक, 16वें अध्याय में पहले से तीसरे और 18वें अध्याय में 51वें से लेकर 53वें श्लोक तक विशेषक अन्वय का प्रयोग हुआ है। युग में एक साथ दो श्लोकों का अन्वय किया जाता है। भगवद गीता में इसका प्रयोग कई बार हुआ है। कई बार मतलब अगर हम लोग अन्वय की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार युग्म ही प्रयोग में आते हैं। जैसे पहले अध्याय में 34वें और 35वें में आपको नज़र आ जाएगा, दूसरे अध्याय में 62वें और 63वें में, तीसरे अध्याय में 14वें 15वें में और 42वें 43वें श्लोक में युग्म अन्वय है। पाँचवें अध्याय में 8वें 9वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 4थे 5वें और 10वें अध्याय के 4थे 5वें तथा 12वें 13वें श्लोक में युग्म है। ऐसे ही 11वें अध्याय के 41वें 42वें और 12वें अध्याय के 18वें 19वें, इसके बाद 14वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में युग्म अन्वय का प्रयोग हुआ है। अब चलिए वापस हम लोग शुरुआती कहानी पर चलते हैं, जहां कर्ण उसी समय सारा ज्ञान भूल जाते हैं जब उन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। शाप को अगर हम अभ्यास की कमी मान लें तो ये समझ में आता है कि अर्जुन की तुलना में कर्ण का दिव्यास्त्रों का प्रयोग का अभ्यास बहुत कम था। संभावना है कि वो अभ्यास की कमी के कारण अंतिम समय में इसका प्रयोग ही नहीं कर पाए। अब जब आपको अन्वय बता भी दिए हैं तो क्या इतने सारे अन्वय याद रहेंगे? ये याद रखने का एक आसान सा तरीका है इन्हें लिख लेना। अपनी भगवद गीता की प्रति पर श्लोकों के बगल में लिख लीजिए कि कौन सा श्लोक युग्म था, कौन सा कुलक। इस तरह बार बार पढ़ते समय आपको उनका तार्किक क्रम याद आ जाएगा। आप कितना सीख पाते हैं ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अभ्यास कितना करते हैं। प्रयास कीजिए, लिख लीजिए, ये उतना कठिन भी नहीं है। धन्यवाद।